आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। बनाई है माला नैनों में अपने है हमको संभाला, चुन चुन के मोती बनाई है माला नैनों में अपने है हमको संभाला, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। करके शक्ति बनाया, निर्धन को तख्त और ताज दिलाया, निर्बल को आकर के शक्ति बनाया, निर्धन को तख्त और ताज दिलाया, स्वर्ग का बनाते हैं हमें बादशाह, स्वर्ग का बनाते हैं हमें बादशाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। बहारों के सुख सारे पाए, ओ यादों की बाहों में हमको समाए, स्वर्गिक बहारों के सुख सारे पाए, हर दिस तारों से जीवन की राह, हर दिस तारों से जीवन की राह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह।
ओम शांति। हम सभी के बीच हमारी गोपी बहन पधारी है। सभी एक हाथ की ताली से उनका अभिवादन करेंगे। स्वागत है, अभिनंदन है गोपी बहन। आज गोपी बहन हम सभी को बताने वाले हैं कि जो कई बार जीवन के अंदर कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई बात आ जाती है, और यूं तो हम ज्ञानी हैं, समझदार हैं, सब नॉलेज है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, हाय ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये जो वाई वाई हमारे अंदर से निकल जाता है, तो उसकी जगह हम अभी अभी गीत सुना ना क्या, वाह बाबा वाह, ये हमेशा अंदर से निकले। नॉलेज तो है, लेकिन समय पर वो अंदर से ऐसे उद्गार निकले, तो कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में गोपी बहन बताएंगी। उससे पूर्व मैं उनका संक्षिप्त परिचय दे देना चाहूंगी। राजयोगिनी गोपी बहन का जन्म अफ्रीका में हुआ और उनका पालन पोषण यूके और भारत में हुआ। 1977 में उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया और 8 वर्षों की गहन साधना के बाद आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवीणता प्राप्त की। उन्होंने यज्ञ की जो आदि रतन हमारी दादियां उनके मार्गदर्शन को पाकर के आत्मिक परिवर्तन की गहराई को समझा और इसे अपने जीवन में आत्मसात किया। आप विश्व भर में यात्रा कर विभिन्न मंत्रालयों और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देती हैं, जहां वे आप आत्मिक जागरूकता को सामाजिक आर्थिक विकास तथा संस्थागत सफलता के लिए आवश्यक तत्व के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करती हैं। आपकी प्रमुख उपलब्धियों में ब्रह्मा कुमारीज की इंटरनेशनल यूथ फोरम की स्थापना और संचालन शामिल है, जो 49 देशों के लगभग 8,000 युवाओं को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करने का कार्य कर रहा है। वर्तमान में आप यहां बाबा के घर में पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा परियोजना के निर्देशन कर रही हैं, जिसमें हाल ही में एक नया बायोगैस सॉलिड वेस्ट रिसाइक्लिंग प्लांट स्थापित किया है, जो ग्रामीण राजस्थान में अपनी तरह का पहला है। ये आपको श्रेय जाता है। अभी हम सभी सुनते हैं बहन गोपी जी को।
ओम शांति। थैंक यू गीता बहन, आपने निमंत्रण दिया आने का। और जैसे शीलू दीदी का फोन आया तो एक सेकंड भी नहीं बीता और मैंने हाँ बोला। तो हम कहेंगे आपकी शुद्ध इच्छा, शुद्ध भावना के कारण वो हाँ निकला हमारे मुंह से। देखो, जब बाबा ने ये संडे की वाणी में चलाई थी ना बात वाई वाई की, तो जब बाबा ने ये वाह वाह की बात उठाई थी तो 3 बातों में वाह वाह होना चाहिए। याद है कौन सी 3 बातें? एक तो बता दिया है, वाह बाबा वाह, फिर वाह पुरुषार्थ वाह, और फिर वाह ड्रामा वाह। अभी आप देखो इन तीनों में वाह नहीं है तो फुल वाह नहीं आता है अंदर से। अपना पुरुषार्थ में ढीलापन होता है तो आप वाह बाबा करेंगे लेकिन भारी मन से वाह करेंगे, वो पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। पुरुषार्थ ढीला हो गया तो विवेक खाता है तो वाह कैसे निकलेगा। ड्रामा की परिस्थितियों पर चिंतन मंथन चलता है, उस विजय से रिएक्शन आता है तो वाह बाबा वाह दम से नहीं निकलता है। तो तीनों सब्जेक्ट में अटेंशन चाहिए। मुझे याद है आज मैं जब गैंसरोड से आ रही थी तो दादी जानकी जी को पांच शब्द उनको कहती थी कि ये पांच शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए। एक है क्यों, दूसरा है कैसे, तीसरा है बट, लेकिन बट, हाँ मैं करना चाहती हूं लेकिन बट, डिफिकल्ट, एक डिफिकल्ट लगता है पापा, और पांचवा क्या है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज को क्या कहेंगे हिंदी में, बहानाबाजी बनना। अभी ये पांच बातें जब दादी ने पहली बारी क्लास किया था इन पांच बातों के ऊपर, मैंने सोचा हमारे आप अपने विचार को देखो कितनी बारी सोच इस प्रकार का चलता है, ये क्यों हुआ, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं, ये छोड़ दो ना चलेगा ना, आगे का कुछ बहाना बना के अपने आप को छुटकारा देते हैं सेवा में। पूरे विचार की धारा इन पांच बातों पे घूमती है। तो आपकी जो संसार है मन में, उस संसार ऐसे दुविधा के विचार या संशय के विचार के आधारित है, और उस संसार में आप ज्ञान के संकल्प रचना चाहते हैं, होगा क्या? थोड़ा इंजेक्शन लगाएंगे खुद को, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन जितना तक इंजेक्शन लगाया थोड़े समय के बाद ऐसे ही वैसे विचार। तो हमारी दादियों ने पुरुषार्थ क्या किया कि सदा उनके दिल और मन और भावनाएं में सदा उमंग उत्साह रहा। हमने कभी दादी को भारी नहीं देखा कोई भी बात में, कुछ भी होता था। रतन मोहिनी दादी जी को तो बहुत हम नजदीक से देखा है, चाहे देश में या विदेश में जब टूर पे होते थे तो हम उनके साथ होते थे। तो हमने देखा कि दादियों की जो विचारधारा है वो क्यों कैसे बट डिफिकल्ट और एक्सक्यूज से मुक्त क्यों है, क्योंकि उनकी विचारधारा कभी रिवर्स में नहीं जाती है। विचारधारा रिवर्स में जाने के कारण ये सब बातें उठती है। रिवर्स माना पास्ट में जाना, समय आपको अभी वर्तमान समय में लेके आ रहा है, इस घड़ी में लेके आ रहा है, और आपकी बुद्धि कहां अटकी है। तो रिवर्स में जितना जाएंगे, मैं आपको एक उदाहरण देती हूं इसमें। एक हमारा एक भाई था, जर्नलिस्ट भाई था, तो एक दफा दिसंबर समय में जब दादी रतन मोहिनी जी यूथ को बहुत इंटरनेशनल यूथ को मिलती थी तो बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस होते थे उनके आत्म अभिमानी अवस्था के ऊपर। तो इस भाई ने रिक्वेस्ट किया कि दादी आप पूरे डबल फॉरेनर्स की संख्या को क्लास कराओ ना। तो मैंने इस भाई को पूछा, तुम जर्नलिस्ट हो, तुम प्रश्न उत्तर करो दादी के साथ। तो उसने जब इंटरव्यू शुरू किया तो अपना परिचय दिया, फिर बोला देखो मैं 40 साल से ज्ञान में हूं, मुझे इस साल में ये रियलाइज हुआ, इस साल में ये रियलाइज हुआ, और मुझे लगता है ओनली 2-3 साल से मुझे ये अंदर से आत्मिक भान की स्मृति रहती है। तो मैं अपने आप को पूछ रहा हूं इतने साल तक ब्राह्मण होकर के मैंने किया क्या। ठीक है, इसकी विचारधारा देखो कैसे चलती है। उस समय दादी 3-4 मिनट उसको लगा, दादी जी शांति से सुना। फिर जैसे उसने अपना पूरा किया, दादी ने उस तरफ देखा और बोला, अच्छा अभी तुमको रियलाइज हुआ कि तुम आत्मा हो? तो उसने बोला हाँ दादी, 2-3 साल से हाँ, लेकिन हाँ रियलाइज हुआ। दादी ने क्या जवाब दिया, अच्छा अभी फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। दादी ने उसकी कहानी के ऊपर और कहानी तो नहीं डाली ना। तो जो भी हमारे जीवन में होता है हम उसको क्या करते, लंबी चौड़ी बात बना करके फिर प्रेजेंट करते हैं। अरे भाई कहानी को तो छोड़ो, अपना रियलाइजेशन बताओ ना। जब कुछ चीज का रियलाइजेशन नहीं हुआ है तब आपकी विचारधारा रिवर्स गियर में चलेंगी ही चलेंगी, क्योंकि अंदर आत्मा का जो विवेक है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कुछ चीज को। क्योंकि क्यों? क्योंकि उसने कुछ रियलाइज नहीं किया है। जब विवेक में रियलाइजेशन आती है, आत्मा में वो रियलाइजेशन, तो छोड़ देते हैं वो सीन को। जो उस सीन से मुझे हीरा मिला है मैं उसको पकड़ के आगे बढ़ूंगी ना, वो चीज अभी भूल गई, मैंने सीखा है ना। तो हमने ये बात दादियों में बहुत देखी, सीखने की भावना बहुत थी। जिसमें सीखने की भावना होती है ना वो ऐसे वाई, जिस तरीके से वाई बाबा की भाव है कि वाई माना ड्रामा के रिएक्शन में, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हम ज्यादातर मंथन करते हैं सिचुएशन पर, ये मंथन पानी के बराबर है। हमको डायरेक्शन मिला है, मंथन करना है तो बाबा की बातों का मंथन करना है ना। ड्रामा हमको क्या सिखाती है, क्या सिखाती है ड्रामा आपको? हाँ, सब चीज में अभी कल्याणकारी युग है, संगम युग का, ठीक है, और क्या सिखाती है? हाँ, ड्रामा तो कहती है टाइम बात को लेके जाती है, तो आप क्यों नहीं छोड़ते हो? सो गई सो गई, समय भी उसको लेके गई और आपकी बुद्धि में पकड़ के बैठे हो। तीसरी बात क्या ड्रामा सिखाती है? हरेक का पार्ट अपना है, तो आप किसी के पार्ट को वाई नहीं कह सकते। फिल्म देखेंगे तो क्या आप सारा टाइम जब मूवी देखेंगे तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, आप ऐसे करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो इसमें क्या है कि वाय से मुक्त होना है तो पहले साक्षीपन की अवस्था को बना के रखनी है। ये है मूल फाउंडेशन। जब साक्षीपन की अवस्था नहीं होती है तभी आप अपनी बुद्धि को हर बात में सिचुएशन में घुसाते हो, और ये आपका बिजनेस नहीं है, ये आपका काम ही नहीं है। और जैसे सारे संसार के प्रॉब्लम्स अपने कंधे पे डालते हो, भारी हो जाते हो। तो वाई मना, वाई शब्द क्यों निकलते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका पार्ट क्या है, मुझे क्या करना है। तो वाई से छूटना है तो पहले अपने आप को एक प्रश्न पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। कभी कभी हम क्या शब्द या व्हाट शब्द यूज करते हैं सिचुएशन के प्रति, इस सिचुएशन में क्या करना है, नहीं मुझे क्या करना है अभी वर्तमान समय में, बस उतना ही करके अपने आप को परिस्थिति से निकालना है। आप ना सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको अपनी पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और हम देखते हैं कि जिन्होंने अपना पार्ट को रियलाइज नहीं किया है तो वो सिचुएशन परिस्थिति कॉन्शियस बन जाते हैं और ऑटोमेटिकली उस भान में पुराने संस्कार आपकी मन बुद्धि एक अभिमान वाला बना देता है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए। और उस समय आपको लगता नहीं कि आप कुछ अभिमान के गहराव में हो, अपने आप को मियां मिट्ठू समझते, होशियार समझते, सब कुछ एनालिसिस करते हैं, लेकिन अभिमान जबरदस्त प्रत्यक्ष हो रहा है उस समय। जब हम सभी इतने तमो प्रधान होकर के बाबा के पास आए तो बाबा ने क्या बोला कि आप नीच पापी क्यों आए हैं मेरे पास, बोला क्या? उस समय बाबा ने क्या किया, दिल खोल करके बच्चों को स्वीकार किया, आओ मेरे लाडले बच्चे, मेरे 84 जन्म लेने वाले हीरो पार्ट धारी, इतनी मर्सी से, दया भाव से, शुभ भावना से। बाबा ने कुछ नहीं देखा, एक्सेप्ट किया ना। तो उसी मुरली में बाबा ने ये भी बात बताई थी कि जितना हम वाई शब्द बोलते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब तक चलेगा, उसमें हमारी शुभ भावना और शुभ चिंतन की शक्ति खत्म होती जाती है। इसी अंदर रूखा सूखा बन जाते हैं, प्यार का लेन देन नहीं होता है, फीलिंग नहीं आती है किसी का उद्धार करें, बस अब हम अपने जीवन में जी रहे हैं ना, बस खुद को ही संभालो, खुद को ही देखो, आगे बढ़ो, किसी और को देखना नहीं। लेकिन ये उल्टा है, एक उल्टी भावना है, समझ में आई बात? जैसे बिल्कुल आप सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हो, सेल्फलेस नहीं बन जाते हो। तो सूक्ष्म रीति से पहले तो पुरुषार्थ का स्क्रू टाइट करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। ऐसे नहीं इस बहन को देख करके मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना है, नहीं, मेरे दिल से मन में जब मैं बाबा के साथ बैठती हूं तो कौन सी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, मैं जब मुरली सुनती हूं बाबा की तो कौन सी बातें मेरे विवेक को टच करती है, वो साइन है, वो आपको एक जैसे साइन पोस्ट मिलता है ना रास्ते में कि इसके ऊपर ध्यान रखो आप, ये आपके पार्ट के लिए संबंधित बातें हैं। लेकिन जब मुरली भी ध्यान से नहीं सुनते हैं तो कैसे पता चले, आईना कहां से मिलता है, आईना मिलता ही नहीं है, फिर फिर अपने विचारों में गुम हो जाते हो, क्या करना है कैसे पूछते हो। अच्छा बहन जी आप बताओ ना क्या करना चाहिए, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। अरे कमाल का प्रश्न है, इतनी वंडरफुल मुरली मिलती है, इतना बड़ा बाबा बैठा है, और क्या आप एक भी साइन नहीं पकड़ पाते हैं उनसे। तो जब साक्षी होकर के मुरली सुनते हैं तो मन दिल को कई बातें टच होती हैं। जो मन दिल को टच हुआ है वो आपकी काम की बात है, वो आपकी पार्ट के संबंधित की बात है, वो आपके कुछ बात को परिवर्तन करना है वो आपके लिए है। कभी कभी हम मुरली सुनते हैं औरों के लिए सुनते हैं, हाँ शायद हाँ मेरा हस्बैंड ये बात सुने तो वो भी सुधरे ना। हम मुरली औरों के लिए नहीं सुन रहे हैं, मुरली एक बहुत शुद्ध आईना है, बाबा की श्रेष्ठ भावनाएं है बच्चों के प्रति। तो उस समय बहुत ह्यूमिलिटी से हम्बल होकर के एक अपने आप को स्टूडेंट की भाव लेकर के बैठना चाहिए। एक बड़े टीचर के सामने बैठे हैं, आखिर वो क्या कहना चाहता है मुझे, अपना मन नहीं चलाना है उस समय। क्या वो जानता नहीं है, पूरी रिक्वेस्ट लेके जाते हैं बाबा के सामने, ये चाहिए चाहिए। अरे कमाल है, किसके सामने बैठे हो। तो ये जो टू टू चलता है ना बुद्धि का, इसको रोकना है और बड़े बाबा को बुद्धि में आह्वान करो, तब जाकर के बुद्धि शांत होगी। ये आदत है, भक्ति मार्ग की आदतें है ना जो हम लेके आए हैं ज्ञान मार्ग में। और जितना बड़े बाबा को बुद्धि में आह्वान करेंगे ना, बुद्धि शांत हो जाएंगी, हम्बल हो जाएंगी। और उसमें जो सही बात है आपके लिए वो टच होंगी आपको। तो मैंने देखा दादियों में, उन्होंने अपने आप को एकदम निरसंकल्प बना दिया था, उनके विचार नहीं चलते थे। ये जो एनालिसिस की आदतें हैं, कुछ नहीं चलता था इनका। इन्होंने इतना एक साइलेंस का संसार बना के रखा था अंदर, क्यों, क्योंकि बड़े बाबा को बिठाया था ना। जब बड़ा बाबा बैठता है ना, सब कुछ शांत हो जाता है, और उस शांति साइलेंस के संसार से वो एक संकल्प रचते थे। टचिंग आती थी बाबा से, क्या बोलना है क्या करना है। उस समय जब ही दादिया लोगों को मिलते थे, हम देखते थे, ऐसे नहीं कि उनकी बातों में लिप्त हो जाते थे, ये क्या बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। वो तो आधा सुन भी नहीं हो, सुनते भी नहीं थे। वो बड़े बाबा के साथ बैठते थे और उस समय इतने साइलेंस में चले जाते थे, और फिर जो भी टचिंग आवे बाबा से वो फिर सुनाते थे। वेरी सिंपल प्रोसेस। ये दिमाग बाबा और बाबा की बातें के लिए है, ये डस्टबिन नहीं है। और जितना आप अपनी बुद्धि को बाहर मुक्ता में लेके आएंगे, ड्रामा के सीन सीनरियों पे चिंतन चलाएंगे, आप बुद्धि एक किचड़ा का डब्बा बना रहे हैं, योग कैसे लगेगा। तो पहले स्क्रू टाइट करना है पुरुषार्थ का, सिंसेरिटी से पुरुषार्थ करना है ना। आप अभी अपने विवेक से पूछो, रियली मेरे पुरुषार्थ में मेरा बेस्ट एफर्ट हो रहा है या काम चलाओ वाला होगा तो आपका विवेक आपको खाएगा। वेरी सिंपल। लेकिन सिंसियर पुरुषार्थ है कि मुझे उस चीज को परिवर्तन करना ही है, तब दृढ़ता पैदा होती है। क्योंकि सभी को, सभी तो है नंबर वाइज, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति सिंसियर होता है उसके प्रति कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती है? एक शुभ भावना रहती है ना, प्यार रहता है ना उस व्यक्ति के लिए, उसको मदद करने की भावना रहती है ना। तो जब हम बाबा के सामने इतने सिंसियर रहते हैं ना, तो बाबा से बहुत मदद खींचते हैं। तो पुरुषार्थ और ड्रामा, जो ड्रामा हमको सिखा रहे हैं, उस पट्टे पे ही बुद्धि को चलाना है। सामने से ऊपर से लगता है नुकसान, लेकिन दूरादेशी बुद्धि होकर के इसमें कल्याण समाया हुआ है। हमने बहुत बारी एक बहुत कहानियां है इसमें, बहुत बारी स्टोरी सुनाई है। जब यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ, उससे 3 मास पहले जहां बाबा का एक शहर था पोर्ट के बाजू में, तो बाबा का एक छोटा सेंटर था वहां पे, तो लैंडलॉर्ड ने उनको बोला आप निकलो, ये खाली करो, मुझे चाहिए ये। अभी वो कहां जाए, फिर शहर के अंदर चले गए, लेकिन उनको बहुत कम समय में शिफ्ट होना था, तो उनके लिए तो घटना थी उस समय, चलो जल्दी जल्दी सामान समेट के दूसरी जगह तो ढूंढो, कहां सभी आ सकेंगे वहां या नहीं आ सकेंगे। तो शहर के बीच में एक छोटा स्थान मिला, शिफ्ट हुए। 3 मास के बाद वॉर शुरू हुआ और वही पोर्ट में पहले बॉम्बिंग शुरू हुआ। तो मैं क्या कहना चाहती हूं कि आप अपनी बुद्धि चला रहे हैं, आप किसके हो, कौन आपका देख रेख कर रहा है, आपको भान है क्या? क्या भगवान आपको ऐसे वैसे छोड़ेगा? तुम जाओ, तुम्हारा कर्म जानो। अभी वो जो शिफ्ट उस समय लग रहा था, बड़ी घटना लग रही थी कि हमको इतना जल्दी निकाल रहे हैं हमारे सेंटर से शॉर्ट नोटिस दे करके, 3 मास पहले के बाद। फिर देखो पूरी जगह जो ओरिजिनल उनकी सेंटर थी, वहां पूरा बॉम्बिंग शुरू हो गया था। अब ये किसका काम है? तो बुद्धि को शांत रखो, आप किसके हो, आपने किसको अपने जीवन की डोर दी है, क्या वो जानता नहीं है आप आपकी रक्षा कैसे करें? क्या है, बहुत समय से हम बिछड़े हुए हैं ना, तो बहुत समय से जो हम बिछड़े हुए हैं, तो बुद्धि में संशय पैदा हुआ है, क्या मेरे लिए कोई मदद करेगा, कोई आएगा, ईश्वर मेरी पुकार सुन रहा है? वो संशय का जो संस्कार है अंदर से, एक माया है। माया इधर ही बैठी है, सुन रही है, सब बातें सुन रही है, क्योंकि उसका काम ही है आपको और बाबा से दूर करना कोई भी कारण से। अभी हम देखते हैं दादियों के सामने कितनी घटनाएं आई, ऊपर वाला जाने ना, हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखें, कितनी प्रेरणा मिल सकती है बाबा के जीवन से। आप तो अभी बाबा का चेहरा देखो, कितना स्टेबल है, कितना सरीन है, सरल, इतनी मीठी दृष्टि है बाबा की। लेकिन शुरू से लेकर के बाबा ने जब हैदराबाद छोड़ा, क्यों? ऑपोजिशन के कारण। फिर गए कराची और वो भी मकान रेंट में लिए, और बीच में जब उसने अपना बिजनेस छोड़ा तो उसका बिजनेस पार्टनर उसको धोखा दिया, पूरा पैसे तो वो लेके गया और जो बचा कुचा डायमंड हीरे जवाहर रहते वो दे दिए बाबा को। उसकी वैल्यू की कीमत पैसे के बराबर नहीं थी, वो धोखा खाया। फिर 14 साल तपस्या में कोर्ट केस तो होते ही रहते थे। उसके बाद फिर जब पार्टीशन का समय आया तब निमंत्रण आया इंडिया से कि आप लेके आओ सभी को और हम खर्चा करेंगे। और वो भी जैसे भारत पहुंचे और उसको फोन किया कि अभी खर्चा करो। मैंने कहा लिखित में दिया है ये खर्चा, क्या कब बोला मैंने कि हम खर्चा करेंगे। 300 लोगों को लेके आओ बाय स्टीमर बाय ट्रेन तक यहां तक पहुंचाओ, और जिस आदमी ने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं खर्चा उठाऊंगा वो लास्ट मोमेंट में खर्चा न उठावे तो आपकी अवस्था कैसी होगी। लेकिन इसका विश्वास किसमें है, कार्य है किसका, तो ये क्यों चिंता करें। तब तो सारा धन जो भी कुछ बाबा के पास था वो गया ना। उस समय कहते हैं बेगरी पीरियड शुरू हुआ। रमेश भाई ने जब बाबा को पूछा था बाबा बेगरी पीरियड कितना समय तक चला, तो बाबा ने बोला 6 घंटे। देखो वंडरफुल है बाबा, कैसे 6 घंटे। एक दिन मुरली सुनाने के बाद बाबा आए नाश्ते पे, और ऐसी बिल्कुल ढीली पानी वाली खिचड़ी और एक रोटी, छोटी रोटी थी। तब बाबा को पता चला कुछ ठीक नहीं है, तो भोली दादी को पूछा बच्चे ने खाया, तो भोली दादी चुप रही। फिर दोबारा बाबा ने पूछा, तब भोली दादी ने बताया बाबा कुछ नहीं है भंडारे में। बाबा ने ठीक है 10 बजे तक इंतजार करते हैं। 10 बजे की पोस्ट में एक लफाफा आया, उसमें 250 रुपया किसी ने भेजा बिना नाम से। वो 250 रुपया जैसे आए तो भेजा उनको मार्केट में, बुरी दादी को भेजा, विश्वकिशोर जाओ अनाज सब्जी लेकर के आओ और बच्चे को आज शाही भोजन खिलाएंगे। 6 घंटा क्या टेंशन लिया। ये जो आदत होती है ना, हर एक ड्रामा की सीन में हम टेंशन उठाते हैं। टेंशन तब उठता है जब अटेंशन नहीं रहता है। कौन बैठा है मेरी रक्षा करने वाला। सारा मेहनत इस स्मृति को बना के रखना है कि बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। तब बुद्धि नहीं चलेंगी। दादियों का यही था। मुझे याद है दादी जानकी जी जब ऑक्सफोर्ड में एक बार आई थी तो हमारा रिसेप्शन इधर होता था, इस तरफ एक छोटा सा क्या कहेंगे सोफा सेट था। तो एक किसी का फोन आया था हांगकांग से, एक बीके भाई था, बड़ा बिजनेसमैन था। उसने दादी को बोला दादी मेरा बिजनेस में दिवाला हो गया है, अभी मैं क्या करूं। दादी ने से अरे तुम काय को चिंता करता है, मैं बैठी हूं ना, बाबा बैठा है ना। वो जो डर पैदा होता है ना, क्योंकि हम बहुत आदती है डर में रहने के लिए। एक तो डर होता है हमारे पुराने विकर्मों का, बोझा का डर, वो अभी चुक तो नहीं हुआ है इसलिए डर रहता है। दूसरा डर जो पैदा होता है संशय के कारण, क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा। मुझे आपको मैं 2-3 बातें कल बहुत अच्छी चिटचैट चली मोहिनी दीदी के साथ, तो मुझे बहुत ये अच्छी बात लगी कि जब पक्का निश्चय होता है तब डर नहीं होता है। पक्का निश्चय कि मैं आत्मा हूं, पक्का निश्चय मैं आत्मा हूं, पक्का निश्चय कि मैं बाबा की हूं, बाबा आया है मेरी नैया को पार लेने जाने के लिए, पक्का निश्चय कि ड्रामा कल्याणकारी है, और पक्का निश्चय अपने श्रेष्ठ कर्मों में कि मुझे अभी श्रेष्ठ कर्म करना है। तो जब पक्का निश्चय होता है डर खत्म। तो उन्होंने बोला देखो डर तो आएगा ही आएगा, पुराना बोझा है तो थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन डर के ऊपर वर्क नहीं करना है, डर के ऊपर सोच नहीं चलाना है, उस समय बदली करो अपने निश्चय बल को और मजबूत बनाओ। निश्चय के ऊपर वर्क करो। बाबा क्या कह रहा है, बाबा ने क्या सिखाया है कि इस समय में हमको क्या करना है, एक स्टॉक जमा होना चाहिए अंदर बाबा की श्रीमत का। तो उन्होंने ये भी बात बहुत अच्छी सुनाई कि जब हम निश्चय को और पक्का बनाते हैं, बढ़ाते हैं, उसको मजबूत करते हैं, तो अंदर जैसे हमारी मनसा में स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है, कहेंगे ना इंग्लिश में मेंटल स्टेबिलिटी, और ऑटोमेटिक साकाश देने का काम करती है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि स्व की सेवा में विश्व की सेवा समाई हुई है, कि जितना हम अंदर जाकर के हम ये पुराने विचारधारा रिवर्स गियर में छोड़ेंगे, बाबा की बातों में, बाबा की गुणों में, शक्तियों में विचार चलाएंगे, तो मनसा में स्थिरता आती है, और वो स्थिरता के कारण साकाश पहुंच रहा है आत्माओं को। तो बहुत अटेंशन चाहिए हर, क्योंकि माया बैठी है आपका मुंह मोड़ने के लिए। देखो ना इसने क्या किया, या किसी के द्वारा आपने सुनी ये बात, कितनी ये बुरी बात थी आपने सुनी, आपको पता है क्या हुआ। आजकल तो चलो आप टेलीविजन में देखते हो बहुत सारी बातें। अंकी के पास विदेश का भाई, बड़ा भाई था, तो थोड़ा इधर उधर देखने लगा कि परिवर्तन हो रहा है लोगों के लाइफस्टाइल में, मोबाइल फोन ज्यादा आ गया है, गाड़ियां ज्यादा बड़ी है, तो दादी को पूछने लगा दादी ये क्या हो रहा है यज्ञ में। दादी ने इसकी बात शांति से सुनी, फिर बोला देखो यज्ञ चल रहा है थोड़े के सच्चा पुरुषार्थ के कारण, थोड़े लोगों का सच्चा पुरुषार्थ के कारण यज्ञ चल रहा है। अभी आपको किस कैंप में रहना है, परचिंतन वाला कैंप में रहना है या ये सच्चे पुरुषार्थ के कैंप में रहना है, समझ में आई बात। कुछ भी हो जाए संकल्प नहीं चलना चाहिए, तब आपको कहा जाएगा वफादारी ईमानदारी, तब आप बाबा के नजदीक रह सकेंगे। थोड़ा सा भी विचारधारा सिचुएशन में गई, कोई भी कहानी में गई, ओम शांति, खत्म, आपकी कमाई चट हो जाती है इस बात। क्या दादियां नहीं जानती है कि यज्ञ के शुरुआत से विघ्न आए हैं, बहुत विघ्न आए हैं, लेकिन हमने देखा कि ये दादियां अपने आप को इतने निमित्त समझते थे, रिस्पॉन्सिबल समझते थे। निमित्त माना ऐसे नहीं कि हम केवल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल इंस्ट्रूमेंट, किसके इंस्ट्रूमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार की है कि हमको ये स्मृति में रहे कि हम किसके निमित्त है। दिस इज वॉट इट मीन्स टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो दादी को पता है, कहानियां तो आती है, बहुत केसेस आए हैं विदेश में। तो बहुत समय पहले एक भाई ने तो कोर्ट केस शुरू किया था, चैलेंज किया था। ये ब्रह्मा कुमारी इसका टाइटल को चैलेंज कर लिया, लोग यूनिवर्सिटी नहीं है। तो बहुत सारी बातें, फिर भी दादी का जवाब क्या था उस समय? देखो दादी, आप जैसे सोचती तो फिर दादी बाबा के साथ नहीं बैठ सकती। दादी को पता है यज्ञ में शुरू से हुआ है, किसी को ढूंढो जिसकी भावना, जो हमारी भावना को समझे, जो मदद कर सके, लेकिन एनालिसिस में नहीं जाओ। क्योंकि उस समय दादी ने बोला, बहुत अच्छी बात बताए कि दादी का ध्यान जब बाबा के ऊपर रहता है तब विश्व का ध्यान बाबा के ऊपर रहता है, लेकिन दादी का ध्यान इन बातों में जाएगा, कमी कमजोरी में जाएगा, तो विश्व का ध्यान वहां जाएगा और वो सब आत्माएं अपने भाग्य बनाने से वंचित रहेंगी। समझ में आई बात? इसका बोझा किसको उठाना पड़ेगा? इसलिए ये पूरा खेल है अटेंशन के ऊपर। अटेंशन प्लीज, आप लोग पूर्वज हो, श्रीमत सामने रख करके, बाबा को सामने रख करके बढ़ना है, ना कि इधर उधर ध्यान कोई भी किसी के बातों में फंसानी है। क्योंकि आपने थोड़ा सा भी ये काम किया है ना, तो सूक्ष्म रूपी कई आत्माएं आपके कनेक्शन में, उनका भी ध्यान कट हो रहा है बाबा के प्रति। उनके मन में उस समय संशय उठेगा और वो अपने भाग्य प्राप्त करने से वंचित होंगी आपके कारण। अपने आप को इतना रिस्पॉन्सिबल समझा? पूर्वज माना आपके पीछे बहुत आत्माएं हैं और आपका थोड़ा सा भी पांव फिसल गया, आप सोचो कितना नुकसान पहुंचता है पीछे वाले को। और उनके मन में संशय, परेशानी शुरू होती है, वो फिर विकर्म में जाते हैं, फिर उसका किसको भोगना पड़ेगा? थोड़ा परसेंटेज तो आपको ही भोगना पड़ेगा ना। इसीलिए आप सवेरे उठते हैं मूड ऑफ, पता नहीं क्यों ठीक नहीं लगता है आज, पता नहीं अचानक बुखार हो गया है, फ्लैट बैटरी हो गई है, क्यों? अब देखो आपका ध्यान कहां जा रहा है। पुरुषार्थ माना ध्यान, वेरी सिंपल, उसको हाथ में पकड़ना है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति में आपका ध्यान डूबे नहीं, कोई भी परिस्थिति में भी, कोई भी परिस्थिति में आपका ध्यान डूबे नहीं। बाबा और श्रीमद को आगे रख करके चलना है, तब आप वो कैटेगरी, सच्चे पुरुषार्थी के कैटेगरी में आएंगे। ये बाबा चाहते हैं, दादियों ने ये हमको शिक्षा दी है खुद के एग्जाम्पल से। निश्चय नहीं हिला है। तो ये भी एक अच्छी बात दीदी ने बताई थी कि जब हम निश्चय को बढ़ाते हैं तो हमारी मानसिक अवस्था मजबूत बनती है और उसके कारण और आत्माएं को साकाश मिलती है। जब हमारी मानसिक अवस्था स्टेबल रहती है तब संकल्प में दृढ़ता आती है और आप संकल्प में बाबा की पावर भर सकते हैं। अब देखो प्रैक्टिकल रूप से, कल था ना बाबा ने बताया, बोलते हो मैं थक क्या हूं, अरे हजार बुझाव वाला बाबा बैठा है, उनसे तो काम लो। तो कभी कभी हम बाबा के पास बैठते हैं और दिल की बात सुनाते हैं, एक के सामने, अनेक के सामने नहीं। हाँ, और ये भी एक बात समझो कि आपने आपकी दिल की बातें कोई व्यक्ति को पहले सुनाई ना, तो बाबा साक्षी हो जाता है। आप उधर गए ना, उधर से मदद लेना, मेरे पास क्यों आए। इसीलिए लॉ कहता है कि जो भी दिल की बातें हैं पहले बाबा को सुनानी है, बाबा के सामने खाली करनी है बातें, फिर तुरंत बाबा टच करता है, अरे बच्ची मैं हजार बुझाव वाला बैठा हूं तेरे पास। तुरंत इतनी फीलिंग आती है अंदर से, शक्ति की फीलिंग आती है, एक प्यार भरी फीलिंग, प्रेम की भावना उत्पन्न होती है अंदर से, और मैं कहूंगी 5 मिनट के अंदर रिफ्रेश हो जाते हैं। ऐसा बाबा काम करता है। अभी ये भी बात अच्छी थी, मोहिनी दीदी ने कल बताई थी कि अभिमान और ईगो जो है ना, वो भी अपना प्लान बनाता है। बाबा की एक डिवाइन प्लान है, गॉड्स प्लान कहते हैं ना, डिवाइन प्लान है। हमको उस प्लान में शामिल रहना है कि बाबा आप जो चाहते हैं वो मुझे वो करना है। तो उसके लिए चाहिए प्लेन बुद्धि। समझ में आई बात। तभी बाबा आपको जहां जरूरी है, जहां उसको अपना कार्य बढ़ाना है, आपको तुरंत वहां पहुंचा देगा। मेरी कई बातों में मेरा ये अनुभव है। लेकिन थोड़ा सा भी बुद्धि चलाए, माना अभिमान अपना प्लान बनाता है ना, अपनी स्पेशलिटी को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने दिमाग चलाता है, उस प्लानिंग में गए या इच्छावश कुछ करना है मुझे उसमें गए ना, तो आप साइड रास्ता पकड़ लिया। तो ये भी ध्यान रखना है कि ह्यूमिलिटी माना क्या, प्लेन बुद्धि रखना। बाबा मुझे आपके डिवाइन प्लान में शामिल होना है, किसी और के प्लान में नहीं जाना है। बहुत लोग हैं जो अपने विचार इच्छावश सुनाएंगे, अभिमान सेवा का नाम लेकर के, थोड़ा रूप अच्छा, रंग अच्छा लगता है, लेकिन आपको पीछे नहीं महसूस होगा कि ये अभिमान प्लानिंग कर रहा है। ऊपर ऊपर से सेवा लगेगी पीछे। तो इसलिए जितना हम प्लेन बुद्धि रखेंगे ना, उतना हमारी भावना, शुभ चिंतक, शुभ भावनाएं मजबूत रहेंगी और राइट टाइम राइट प्लेस हम पहुंच जाएंगे। दादी मोहिनी दीदी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, ये जो खरगोश कछुए की कहानी है ना, नहीं, खरगोश कितना जल्दी जल्दी भागता है और कछुआ धीरे धीरे, लेकिन आखिर लास्ट में जीत किसकी थी, कछुए की जीत थी ना। तो खरगोश को क्या हुआ बीच में, उसको क्या हुआ, आलस से आ गए, सो गया ना, कहता अरे ये तो बहुत धीरा है, चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। और वो इतना ऐसा सो गया कि कछुआ उसको ओवरटेक करके चला गया और जीत गया। तो ये अलबेलेपन की नींद, जो व्यक्ति दिमाग बहुत फास्ट चलाता है ना, उसको अलबेलापन जरूर आएगा, थक जाएगा ना। इतनी सारे संकल्प रच के विचार में चला जाना, अपनी शक्ति गायब करना, थक जाएगा ना। और थकावट में क्या होता है, चलो सो जाए ना, टाइम है ना, बहुत कुछ किया है ना, अभी टाइम अपने आप को थोड़ा टाइम दे करके रेस्ट कर लो। तो इसीलिए मनसा के ऊपर बहुत पकड़ चाहिए। देखो हमको अपनी बुद्धि को फ्री रखनी है, लेकिन मन को कभी फ्री नहीं रखना है, समझ में। बुद्धि फ्री माना बुद्धि केवल बाबा की गोद में बैठनी चाहिए, वेरी फ्री, लेकिन मन को कहीं ना कहीं श्रेष्ठ बातों में मन मना भव रहना, मना क्या, कई बातों में, ज्ञान की बातों में, चक्कर की चिंतन की बातों में, त्रिनेत्री, कोई बाबा की ऐसे क्या कहेंगे, कोई शक्ति, कोई गुण में, मंथन में मन को कई काम देना पड़ता है। क्योंकि मन को काम नहीं देंगे ना तो जो पुराना एक संस्कार है, जो हम हमारा जो शरीर के साथ कंबाइंड होने का संस्कार है ना, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना, ये शरीर सारी जिंदगी साथ देता है ना, नहीं? ठंडी के दिनों में कितना अच्छा लगता है, और 5 मिनट रजाई के अंदर रहते रहो, फिर लेटने का जब मन आता है तो शरीर खींचता है ना, तो आपका फ्रेंड खींचता है ना आपको उस तरह, तो ये संस्कार बन गया है ना। तो आप मन को, क्योंकि मन कर्मेंद्रियों के साथ कनेक्टेड है, तो आप मन को श्रेष्ठ बातों में बिजी नहीं रखेंगे तो कर्मेंद्रिय खींचेंगी ना, समझ में आई बात, वेरी सिंपल। अलबेलेपन यहां से शुरू होता है। तभी दीदी ने बताया कि ये जो ईगो वाला संस्कार है, किसी ने दीदी को पूछा था कि दीदी हमको कैसे पता चले कि हम ईगोलेस बन गए हैं, तो दीदी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहती है जहां पे ईगो होगा आपको हर्ट महसूस होगा, आप सूक्ष्म रीति से दुख लेंगे, ये ईगो की निशानी है। और अंदर से क्या असंतुष्टता पैदा होगा, कुछ भी हो जाए ना खुश ना अच्छा, ये ईगो की निशानी है। निराश होना ये ईगो की निशानी है। तो ये सब कहें क्या कहेंगे, इसको निशानियां को समझना है अंदर कि किस प्रकार के पुराने संस्कार किस रूप में मुझे अभी भी खींच रहे हैं। निराशीपन की आदत है, असंतुष्टता की आदत है, देखो अपने आप को। और फिर जब निर्वाण की बात आई कि निर्वाणा में माना वाणी से परे जाना, जब हम डीप साइलेंस में जाएंगे तब क्रिएटिविटी पैदा होती है। तो साइलेंस में जाने की एक आदत बनानी है। देखो जब हम वहा बाबा वहा बोलते हैं ना, तो फुल बाबा, बाबा मेरा बच्चा, बाबा बाप, बाबा दोस्त, बाबा माँ, बाबा भाई, बाबा बहन, एक एक संबंध में बाबा होना चाहिए, तब जाकर के दिल से वाहा बाबा वाह, फुल बाबा, माना एक एक संबंध में बाबा के ऊपर फुल विश्वास कि वो संबंध निभाएगा। तब जाकर के फुल अंदर से निकलेगा। दादिया जब वहा बाबा वहा करती थी तो इनके संसार में तो एक ही बाबा था, और हमारे संसार में वन बाबा एंड वन अदर, दूसरा कोई एक भी बैठा है चिपके साइड में कोने पे। तो जब दादिया बोलती थी तो इतना अच्छा लगता था, तो उस नशे में हम बोलते थे वहा बाबा वाह लेकिन हमारे नशे से भी और बोले ना, वहा बाबा वहा, क्योंकि पूरा विश्वास है कि बाबा हर संबंध निभाएगा मेरे साथ, मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा बाबा। तो समझ में आई क्या प्रेपरेशन करना है, अपनी मनसा और बुद्धि को किस तरीके से हैंडल करना है ताकि रिवर्स गियर में ना जाए। और आप देखेंगे अंदर से रियली कदम कदम पे, मैं आपको बताऊं, बाबा ऐसा है बुद्धि का पांव आपका नीचे ही नहीं रखने देगा, जैसे कोई छोटी बेबी को ऐसे कंधों में जाकर के, ऐसे ही बाबा हमको रखता है। सच में आपको बताओ, कुछ भी हो जाए, चलो किसी ने हमारी गिलानी की, उस समय जब बाबा शब्द आता है ना, तुरंत उस समय बाबा कुछ ऐसा महसूस कराता है, सम्मान का महसूस कराता है, अपनी गुड विशेस ऐसे चलाता है कि जो हुआ है ड्रामा में उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं, ड्रामा के हर सीन का इफेक्ट लेते हैं और वो इफेक्ट जमा होता है और डिफेक्ट बन जाता है। तो इसीलिए ड्रामा के अनुसार मैंने बताया ना, वहा बाबा वहा माना सर्व संबंध, तब वहा बाबा वहा निकलेगा, वहा ड्रामा वहा माना साक्षीपन की अवस्था, ड्रामा में हर बात में साक्षी होकर के चलना है, और वहां पुरुषार्थ वहां माना सिंसेरिटी से पुरुषार्थ करना, तब जाकर के फुल वहां निकलेगा। दूसरी साथी बैठा है, पीछे का इंजन है, वो कराएगा, कर रहा है ना। अभी ये जो अव्यक्त वाणियों की रिविजन होती है ना, तो जब लास्ट अव्यक्त वाणी चली, नहीं उससे पहले एक, तो हम, मुझे याद है हम बाबा के सामने थे उस समय, तो जैसे वाणी शुरू हुई मेरे अंदर में जैसे रोमांच खड़े हो गए, इतनी एक गहरा एक महसूस रियलाइजेशन शुरू हुआ, तो मैं अपने आप को साक्षी होकर के देख रही थी, मैं बोला बाबा मैं पुरुषार्थ क्या कर रही हूं, मैं तो कुछ पुरुषार्थ नहीं कर रही हूं, ये तो आपके शब्द के बीज मेरे अंदर है और वो जागृत हो रहे हैं और मुझे प्रेरणा दे रही है, आप ही मुझे पुरुषार्थ करा रहे हैं, वंडर की बात थी ये तो। ये भी अभिमान की निशानी है, मैं कुछ कर रहा हूं। पुरुषार्थ किस आधार से होता है, पहचान पढ़ाए ईश्वरीय प्यार से, तो कौन करा रहा है पुरुषार्थ आपको, कौन करा रहा है पुरुषार्थ आपको, है ना। आप क्या कर रहे हो, आपका काम है चलना, तभी वो आपको चलाएगा। दादी बहुत बारी बोलती थी, मैं चलती हूं इसीलिए बाबा चला रहा है, और अभिमान क्या करेगा, रुकावट डालेंगे बीच, आप रुक जाओ ना, बैठ जाओ ना, आराम करो ना थोड़ा, क्या जल्दी पड़ी है, अभी बहुत टाइम बाकी है ना। तो इस भट्टी में जो आप आए हो, रियली टाइम टू फेस योरसेल्फ। ये जो अभिमान वाली विचारधारा चलती है ना, उसको भी खत्म करनी है, कट करनी है श्रेष्ठ संकल्पों से। संकल्प संकल्प को परिवर्तन करता है, इसको छोड़ो नहीं, और दृढ़ संकल्प रखना है कि बाबा इस भट्टी से जब हम वापस घर चले जाए, तो ये निराशा का संस्कार, असंतुष्टता का संस्कार समाप्त होना चाहिए, तब जाकर के आप देखो कैसे बाबा मदद करता है। ओके, ठीक है, समझ में आई बातें, थैंक यू, चलो ओम शांति।